याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से।
ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन के सारे ज्ञान का सार है। क्या सार है? मन मना भव, पवित्र भव, सब चीजें राइट हैं। जितनी भी हम मुरलियां पढ़ते हैं, जितना ही पुरुषार्थ करते हैं, उस सब का सार है घर वापसी। सवेरे से लेकर शाम तक जितना भी हम ज्ञान अप्लाई करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, मुरली सुनते सुनाते हैं, योग के अलग अलग अभ्यास करते हैं, दूसरों का बाबा का संदेश देते हैं, किस लिए कि सबको घर वापस लौटना है। और बाबा अनेका अनेक युक्तियां बतलाते रहते हैं कि घर वापस जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है। जैसे आज भी बाबा ने कहा, तुम्हें साइलेंस में वापस जाना है, इसलिए बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। शरीर को भूलना, शरीर के संबंधों को भूलना, जो भी शरीर से रिलेटेड वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सब चीजें भूलना। जैसे आज कहा, और सब संग तोड़, एक को याद करो, इस देह को ही भूल जाना है। तो बड़ा गहरा पुरुषार्थ है ये, लेकिन एक बार आदत पड़ गई उसकी तो वो सहज भी है। जैसे किसी को नशा करने की आदत पड़ जाती है तो वो उसके लिए सहज काम होता है, फिर उसके बिना रह नहीं सकता है। उसी तरह ये इस अध्यात्म पथ के मार्ग पर तरह तरह के बाबा अभ्यास बताते हैं। अगर एक बार हमको उनकी आदत पड़ गई फिर उसके लिए मेहनत नहीं लगती है, फिर मन बुद्धि भागता नहीं है। जो मन को खिंचावट होती है, भारीपन लगता है, वो सब समाप्त हो जाता है अगर हमें आदत ठीक से पड़ जाए तो। और आदत डालने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। कल संडे की मुरली में बाबा ने विशेष प्रकार से तीन प्रकार के अभ्यास का अनुभव भी कराया था, स्वरूपों का अनुभव कराया, और उसका अभ्यास करने के लिए हमको एक तरह से होमवर्क भी दिया। तो सारे दिन में हम उसका कितना गहराई से अनुभव करते हैं, क्योंकि ये अनुभव जल्दी से जल्दी होने वाला नहीं है, बहुत धैर्यता चाहिए इसमें, बहुत धैर्यता चाहिए। नहीं तो हमारी मानसिकता ये होती है कि जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अभी फट से आज ही अनुभव हो जाए। लेकिन लंबे समय का अभ्यास, लंबे समय की साधना, वो करने के बाद ही थोड़ा बहुत हमारे पास में अनुभव आता है। और सारे कल्प में केवल संगम युग है जो अनुभव करने का युग है, बाकी किसी भी युग में ऐसा अनुभव नहीं है जो संगम का है। चाहे वो परमधाम का अनुभव है, चाहे वो देवताई संस्कारों का अनुभव है, देवताई दुनिया का अनुभव है, चाहे वो पूज्य स्वरूप का अनुभव है, वो केवल अभी अनुभव कर सकते हैं। तो कुछ एक महीनों से जो मुरलियां चल रही हैं सारी तपस्या के ऊपर हैं। अलग अलग बाबा तपस्या की परिभाषा से हमको तपस्या का सहज मार्ग बता रहे हैं। तपस्या की जो पहली मुरली थी, बाबा ने कहा था तपस्या अर्थात खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ। कितना सहज रूप से उसका बाबा ने हम सबके परिभाषा रखी। काल की मुरली में भी था तपस्या अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना, और पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। जितना हम गहराई से इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म ज्ञान के राज हमको महसूस होते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, काल की मुरली में था राजयुक्त बनकर महीन और महान सेवा करो। तो कल तीन स्वरूपों का बाबा ने अनुभव बताया था। कौन से बच्चों को बाबा ने कल देखा था? अपने श्रेष्ठ आत्मा रायल आत्मा को देखा था। पिछले संडे की मुरली प्योरिटी की पर्सनैलिटी, वो सारा पर्सनैलिटी के ऊपर बाबा ने विस्तार से बताया, और कहा था रॉयल्टी के बारे में आगे बताएंगे। तो पर्सनैलिटी के बारे में तो बताया था कि जो पर्सनैलिटी होती संसार में वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। संसार में जितनी बड़ी पर्सनैलिटी होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारियां होती है, उनके ऊपर जवाबदारी होती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो संसार की सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हो। जो जिम्मेवारियां हमारी हैं वो सब गुप्त हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं। संसार में तो सभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन ये सारी गुप्त मेहनत है। प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करना फिर भी आसान है, लेकिन ये जो गुप्त है, मन ही मन जो अंदर चल रहा है, मन को एकदम शांत रखना, सारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएं, जो चाहे हम वही सोचें, जो चाहे वही बोलें, जो चाहे वही देखें, ये सारे कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, तो बड़ी सूक्ष्म साधना है। लेकिन अगर लंबे समय से हमें कुछ आदतें पड़ गई तो वो साधना भी आसान हो जाती है। कितने लंबे समय से बाबा अनेक तरह की ड्रिल बताते रहते हैं, अनुभव करते होंगे। अगर हम उसका प्रयास करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो नेचुरल नेचर बन जाती है, उसके लिए फिर मेहनत नहीं लगती है। जो सोचा मन फिर सीधा उधर ही जाएगा। अगर हमने मन को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया तो पुराने संस्कार हमें अपने तंग करते रहते हैं। तो पुराने संस्कारों से मुक्त होने के लिए इसे बाबा कहते हैं नए संस्कारों को इमर्ज करो। और नए संस्कार कौन से हैं? ये ज्ञान के संस्कार हैं। ये ज्ञान के संस्कार सारे संस्कारों को बदल देते हैं। ज्ञान नहीं है तो अनादि संस्कार भी इमर्ज नहीं होंगे, आदि संस्कार भी इमर्ज नहीं होंगे, पूज्य स्वरूप वाले भी इमर्ज नहीं होंगे। तो सर्वश्रेष्ठ संस्कार जो हैं इस संगम युग के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के संस्कार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी हैं, देवताओं को चोटी नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण चोटी हैं। क्योंकि भगवान के साथ मिलन ब्राह्मण मनाते हैं, भगवान देवताएं नहीं मनाते हैं। तो जो ज्ञान के संस्कार हैं सबसे बड़े संस्कार हैं। ये ज्ञान के संस्कार हमारे जीवन में ऐसे रच बस जाने चाहिए जैसे हमारी कोई नेचुरल आदतें होती हैं तो अपने आप काम करती हैं, या जो सारे दिन में सामान्य कार्य होते हैं तो उनके लिए सोचना नहीं पड़ता है। जैसे अभी माता जी ने एंटर किया तो सोचना नहीं पड़ा कि हम उधर देखें, अपनी आप ही आंखें चली गई, नेचर पड़ गई है ना, सोचना पड़ा किसी को? ऐसे ही हमारे ज्ञान के संस्कार भी ऐसे नेचर हो जाने चाहिए, लेकिन लंबे समय के बाद हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आशावादी बनो, निराशावादी नहीं। पिछले संडे की मूल्य में था वरदान, ब्राह्मण अर्थात सदा आशावादी, होपलेस केस को भी होपफुल बनाने वाले। तो संडे की मूल्य में बाबा ने जो तीन स्वरूप देखे थे श्रेष्ठ आत्माओं के, रायल आत्माओं के, सबसे पहला रूप था अनादि स्वरूप। बाबा कहते हैं अनादि, तो ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ना वो केवल सुनना नहीं है, उसको साथ साथ में अनुभव करना है। जैसे बाबा हमको कहते हैं अपने आत्मिक अनादि स्वरूप को देखो कितने रायल हो, तो उसको इमेजिनेशन करना है। ये सारा ज्ञान इमेजिनेशन का है, अर्थात इमर्ज करने का है। जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से है उसको इमर्ज करना है। तो अपनी आंखों को सीधा गड़ा देना है अनादि स्वरूप पर, आत्मिक अनादि स्वरूप जो हमारा परम धाम का है। बाबा कहते देखो कितनी रॉयल्टी है वहाँ, कितनी चमक है। तो सुनते सुनते हमको अपनी आंखों को सीधा परम धाम में गड़ा देना है कि मैं आत्मा परम धाम में कितना चमक रही हूँ, बाबा के पास बैठकर बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ, इक्वल टू बाप समान। क्योंकि परम धाम की अवस्था कौन सी है? बीज रूप की अवस्था है। परम धाम की कौन सी अवस्था है? बहुत पावरफुल अवस्था है वो बाप समान अवस्था है वो संपूर्ण पवित्रता की अवस्था है। उसमें परसेंटेज नहीं है, सत्युग में आएगी फिर भी परसेंटेज है, लेकिन अपना शांति धाम में कोई परसेंटेज नहीं है, वहां तो संपूर्ण है एकदम। तो अपने आप को वो फुल करना है कि वो मैं आत्मा वहां अपने आप को देख रही हूं, वो इमेजिनेशन करना है। सुनते सुनते ही, सुनते सुनते अगर हम मन बुद्धि के अंदर कुछ ऐसे चित्र प्रिंट कर देते हैं तो वो कर्म करते हुए भी हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी, फिर उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, उसको चित्रित करना, मन के अंदर अंकित करना, उसको उसके चित्र बनाने हैं। तो देखो अपने आत्मिक अनादि स्वरूप में हम आत्मा कितनी चमक रही हैं, सभी साथ साथ में अनुभव करते जाओ। और परम धाम के और कौन सी हमारे गुण विशेषता हैं? बाबा कहते हैं वहां कौन से हमारे अनादि गुण हैं? जो सत्य, हाँ वाणी से परे वाला वो भी है, लेकिन गुण कौन से हैं? हमारे जो सात गुण हैं। तो वहां उसका अनुभव जो है वो फुल अवस्था में है, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो ज्ञान बीज रूप अवस्था में समाया हुआ है। वो वहां चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जैसे धरती पर बीज पड़ा होता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे उसको हवा पानी मिलता है तो वो सारी हरियाली बाहर आ जाती है। ऐसे जब हम वो स्मृति में लाते हैं कि मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली मास्टर बीज रूप हूं, तो इस संगम में ऊपर बैठकर परम धाम का अनुभव हम करने लगे पड़ेंगे। मन में वो हरियाली छाने लगेगी, वो गुणों की खुशबू आने लगेगी। जैसे आज बाबा ने क्या कहा, तुम वो फ्लावर, कांटों को फूल बनाने वाले। तो जो हमारे अंदर के कांटे हैं, विकारों के कांटे, वो सारे अपने आप खत्म होते जाएंगे, क्योंकि हमने चिंतन चालू कर दिया, अपने मन बुद्धि द्वारा वहां का चिंतन चालू कर दिया। वैसे भी आप देखते हैं जहां भी हम रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां रहते हुए अगर किसी दूसरे स्थान को याद करते हैं, किसी परिवार जन को याद करते हैं, किसी रिश्तेदार को याद करते हैं, दोस्त को याद करते हैं, तो हम वहां बैठे बैठे वो सारी अनुभूति होने लगती है। ऐसे हमको यहां बैठे बैठे अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है, तो वो हमारा अनादि स्वरूप है।
तो वहां आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई बंधन ही नहीं किसी चीज का, निर्बंधन है, एकदम स्वतंत्र पंछी की तरह है। वाणी से परे कोई आवाज ही नहीं है, उस वाणी से परे की अवस्था में स्थित हो जाना है। निर्वाण धाम, जो बाबा के त्याज की मूल्य में तुम्हें अब निर्वाण धाम वापस जाना है, तो वो साथ साथ में अनुभव करना है। अनादि आत्मिक स्वरूप में लंबे समय से टिकना है। दूसरा स्वरूप कौन सा बताया? आदि स्वरूप। आदि स्वरूप अर्थात देवताई स्वरूप। तो देवताई संस्कार हम सबके अंदर हैं, तो देखना है हमारे में सचमुच वो देवताई संस्कार हैं, क्योंकि सारे मुरली किसके ऊपर है? सत्यता की सभ्यता, रियलिटी ही सत्यता, सत्यता की सभ्यता ही रियल रियलिटी है। तो हमारा वास्तविक जो स्वरूप है बाबा, हमें उससे जैसे उसके लिए हमको उस तरफ हमारे कदम बढ़ा रहे हैं तो महसूस करना है, क्योंकि परम धाम का सत्य स्वरूप है। बाकी देवताओं का भी इतना सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे, वहां से तो हमारी उतरती गला है। तो वहां फिर भी देवताई संस्कारों को इमर्ज करना है। वो देवताई संस्कार कौन कौन से हैं याद करो, बाबा ने देवताओं के बारे में या देवताई दुनिया के बारे में साकार अव्यक्त वाणी में क्या क्या कहा, सब रिमेम्बरेंस उसको बुद्धि में लाओ, क्या 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 हुआ है। हाँ हाँ, तो एक तो ये हमको याद हो गया, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब सर्वगुण कौन कौन से हैं है? मिलते रहेंगे, और सर्वगुण पवित्रता, नम्रता, सहनशीलता, निर्भयता, निश्चिंतता, गुणग्राहकता, गंभीरता, रमणीकता, धैर्यता और अनुशासन, अथक, आज्ञाकारी, ईमानदार, साहस, सहनशीलता और स्नेह, सहयोग, श्रेष्ठता, निरंकारिता और नियमितता, निश्चिंतता, सत्यता, सभ्यता। हाँ, ऐसे अनेकों गुण हो सकते हैं। तो केवल एक उसको हमको बुद्धि मेरे सर्वगुण संपन्न, उसके आगे फिर काम करना है कि कौन कौन से सर्वगुण है जो हमारी ओरिजिनल संपत्ति है, जायदाद है, वो हमारे निजी संस्कार हैं। ये नहीं सोचना हमको वो ग्रहण करने हैं, वो है ही ऑलरेडी हमारे अंदर। ये तो ऊपर जो अज्ञानता का आवरण आ गया उसको हटाना है, और अज्ञानता का आवरण हटाने के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए। तो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान के आईने में अपने आप को देखते रहेंगे, तो वो जो अज्ञानता का आवरण है वो अपने आप ही हटता जाएगा। तो दूसरा रूप है देवताओं का, याद करो वो उस दुनिया में चले जाओ भी। अब देवता दुनिया कैसी है, बाबा ने क्या क्या कहा उसके बारे में? एक है अपने बारे में, एक है वहां की दुनिया का जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी होगी, आत्म अभिमानी रहती देवताओं की, जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी होगी वहां की, पेड़ पेड़ पौधे कैसे होंगे, क्या करेंगे पेड़ पौधे, सवेरे सवेरे उठाएंगे वो, मान हम वहां में नींद नहीं करने देंगे, लेकिन वो जागना और सोना एक समान है वहां। वहां थकावट वाली बात नहीं है, थकावट की बात यहां है। और यहां थकावट कब होती है आज की मुरली के अनुसार? हाँ देखो, माता जी ने सारा याद रखा हुआ है। तो अगर किसी को थकना है तो क्या करना है, प्राप्तियों को भूल जाने का। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों को सदा सामने रखो। तो सत्ययुग में क्या क्या होगा, पेड़ पौधे हिलेंगे, वहां के साज कैसे होंगे, अलग अलग तरह तरह के साज होंगे, पंछियों की आवाज में होंगे, वो झूलेंगे और हमें उठाएंगे। और क्या होगा वहां, फल फूल कैसे होंगे, फल कैसे होंगे, जैसे हम आगे जाएंगे ना पेड़ अपने आप झुक जाएगा, आगे सीधा मुख के आगे आ जाएगा रस, है ना, रसीले पदार्थ होंगे, तो रसीले फल एकदम फल जो रसदार होंगे वो। तो जैसे आगे जाएंगे तो क्या क्या आएगा, जो फल खाना होगा वो आगे आ जाएगा। तो सबके मुख में पानी आ गया, तो सारी रात इसको खाते रहना अभी। और क्या सत्युग में बारे में, पशु पंछी, हाँ छोटे बच्चे भी पशु माने एक सेकंड में स्विच दबाया और कहाँ का कहाँ पहुंच गए। और हर एक का अलग अलग इंडिविजुअल होगा, फैमिली का अलग होगा, और जाएंगे कहाँ, पिकनिक करने जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, अच्छा और क्या करेंगे सत्युग में, रासलीला करेंगे श्री कृष्ण के साथ। तो वो लीला भी बताई, और बच्चों ने बाबा की लीला भी देखी मुरली में, कल मुरली में कौन सी लीला थी, बच्चों की लीला भी बाप देखते हैं, संगमयुग की लीला, चलो वो बाद में वर्णन करते हैं। तो सत्यु की लीला बाल वो रासलीला उसका अनुभव करना है। तो देवताएं कितने मुस्कुराते होंगे, कितने वो खुश होंगे, वो नेचुरल उनका हर्षित चेहरा है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि अभी कोई आया तो थोड़ा मुस्कुरा दे सामने से। जैसे यहाँ कोई आता है तो सामने से उसके मुस्कुरा के रिस्पॉन्स देना पड़ता है, वहाँ ऐसा तो है ही नहीं है। हर्षित हर्षित चित्त हर्षित मुख आज की मुरली में भी था कल की। तो देवताएं संस्कार वो वास्तव में हमारे अंदर हैं, उनका चिंतन करना बार बार, क्योंकि वो देवताएं संस्कार जो है ना बहुत नीचे चले गए हैं, उसकी तय बहुत नीचे चली गई, जीवन मुक्त अवस्था है वो। और जो अभी के संस्कार हैं, हम सारा हमारा चिंतन उन्हीं के ऊपर चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मेरे में क्रोध बहुत है, मेरे में अभी नाराज होने के संस्कार बहुत हैं, कोई कुछ कह देता है तो नाजुक नेचर बहुत है। तो उन संस्कारों का चिंतन करते करते वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। उनसे डरना नहीं है, उनको डराना है, और उनके साथ तो छेड़ना नहीं है, बात ही खत्म है। उनके साथ छेड़ते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। अगर किसी को हम बार बार बुलाएं तो वो तो हमारे पास आएगा नहीं, अगर हम किसी को बुलाएं नहीं तो क्यों आएगा हमारे पास। तो बुलाना किसको है? जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं? सदा खुश रहने के संस्कार, दैवी संस्कार हैं, मुस्कुराते रहने के संस्कार हैं, वो देवता संस्कार देने के संस्कार हैं, वरदान देने के संस्कार हैं। तो वो इमर्ज करने हैं, संगम युग पर ही देवताओं संस्कारों का हमको गहराई से अनुभव करना है। तो ये दूसरा रूप था कौन सा? अनादि देवता स्वरूप। तीसरा रूप कौन सा बताया? पूज्य स्वरूप। तो पूज्य स्वरूप में क्या करेंगे? पूज्य स्वरूप में बहुत बढ़िया योग के बहुत प्रयोग किए जा सकते हैं। बाबा कहते हैं मंदिरों में चले जाओ, अपना वरदानी स्वरूप समझकर वहां महसूस करते हुए वहां खड़े हो जाओ। मंदिरों में जैसे समझ लो मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं, है ना, अभी सभी अपना अपना हाथ खड़ा करो ऐसे वरदानी रूप में, है ना, एक्टिविटी करनी है। तो इस वरदानी रूप में अभी सभी सोचो हम मंदिरों में पहुंच गए, एक ही हमारा रूप अनेक मंदिरों में है, और इस हाथ से वरदानों की किरणें निकल रही हैं, और हमारे सिर पर बाबा शत्रछाया बनकर, वरदाता बाप हमारे सिर पर शत्रछाया बनकर है, और ये पूरा शरीर लाइट का बॉडी है ये, और वरदान वरदानों की बरसात ऊपर से हो रही है, और इन हाथों से वरदानों की शक्तिशाली किरणें निकलकर सर्व जो सामने असंख्य भक्त आत्माएं हैं, अलग अलग जिनकी मंशा है, मनोकामनाएं हैं, शुभ मनोकामनाएं हैं, वो सारी शुभ मनोकामनाएं इच्छाएं इन हाथों से जो वरदान की किरणें निकल रही हैं, बाबा इन हाथों द्वारा उन भक्त आत्माओं की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो महसूस करना है योग में बैठे बैठे भी। अगर कभी नींद आती है तो योग में बैठे बैठे इसे हाथ कर दो, लेकिन घर में अकेले यहां संगठन में नहीं करना। तो ऐसे करना बार बार, वरदानी मूर्त में स्थित रहना, क्योंकि अभी नहीं, हमारे हाथ ऐसे होंगे, अगर ऐसी आदत नहीं डाले तो कैसे होंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहेंगे एक दूसरे को, हाथों का काम है करना। तो इन कर्मेंद्रियों को भी अभी हमें अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना है, उनका अभ्यास डालना है। अभी से हमारे हाथ वरदानी नहीं होंगे तो फिर अपना द्वापर युग में कैसे होंगे वहां, जब पूज्य स्वरूप में बाबा ने कहा। तो प्रैक्टिस तो सारी संगम युग पर है ना, इसलिए शुरू शुरू में बाबा दादियों को क्या अभ्यास कराते थे? देवताएं डेरास पहनाते थे। क्यों? क्योंकि वो संस्कार प्रैक्टिकल में हो जाए, है ना, देखा होगा देव दादियों के चित्र के देवताएं ड्रेस में। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, अपनी पॉकेट में दोनों चित्र रखो, है ना, एक टोकरी वाला भी रखो और एक देवताएं ड्रेस वाला भी रखो। बोझ टोकरी अर्थात बोझ है, तो सारे दिन में कौन कौन सा बोझ उठाते रहते हैं। कल भी मुरली में था ना कि बोझ उठाते हैं, कल लास्ट पैराग्राफ था मुरली ना, पार्टी के साथ मुलाकात। तो हम बोझ उठाएंगे तो ऊपर उड़ेंगे कैसे, हल्के कैसे बनेंगे? तो हमको ये सारे संस्कार अभी इमर्ज करने हैं। तो ये तीसरा रूप कौन सा था? पूज्य रूप। इसमें बहुत सारे अलग अलग से योग के प्रयोग किए जा सकते हैं। कभी मैं मंदिर में जाकर मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं, भक्तों को भी साकाश दे रहे हैं, या भक्तों को कभी अपने सामने इमर्ज कर लिया अलग अलग रूप से। कितने प्रकार की देवियां हैं, कभी शीतला देवी, कभी संतोषी देवी, कभी ज्वाला देवी, कभी काली देवी, अनेक प्रकार की देवी बन सकते हैं। कभी हनुमान जी बन जाए, माताएं भी हनुमान बन सकती है, बड़ी बात थोड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो अभी हमारा परिवर्तन तो होता ही रहता है, है ना। हनुमान जी बढ़ के उड़ के परिक्रमा कर लो विश्व की। तो योग के कितने प्रयोग हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं सत्यता ही, सत्यता की सभ्यता ही रियलिटी है, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सत्यता। तो सत्यता अर्थात सत्य, सत्य अर्थात अविनाशी। तो अविनाशी की महिमा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो बाप की महिमा वो बच्चों की महिमा है। तो जैसे बाबा की महिमा है वो ही महिमा देखना है। बाबा की महिमा कौन सी है? वो सागर के समान है। तो हमें अपने आप को भी मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सर्वशक्तियों का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, आय का प्रदान था ना, तो वो हमको महसूस करना है। क्योंकि स्वयं भगवान हमको कह रहा है कि तुम ये हो, तो हमको स्वीकार करना है, हाँ हम ये हैं। स्वीकार कब होगा? कब स्वीकार कर सकते हैं? जब मन बुद्धि थोड़ा क्लियर होगा। नहीं तो मैल इतनी भरी पड़ी है ना, वो हमको महसूस ही नहीं कर देती, करने देती है, उसको हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सारे दिन में अपने मन को हम छोटी छोटी बातों में इतना बिजी कर देते हैं कि ज्ञान इतना प्योर है, पवित्र है, वो ऊपर से निकल जाता है। आज बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को नजरों से निहाल करने आया हूं। नजरों से निहाल करना अर्थात स्वर्ग के मालिक बनना। तो एक कितना योग का अच्छा प्रयोग है कि जैसे मैं भगवान के आगे सामने बैठा हूं, बाप दादा के सामने बैठा हूं, और बाबा अपनी नजरों से मुझे निहाल कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, उसको अपनी आंखों में बसा लो। हम देवियों के सामने जाते रहे भक्ति मार्ग में, घंटों घंटों साधना करते रहे, कीर्तन करते रहे, उनसे दृष्टि लेते रहे, जो कि मनुष्य की रचना है वो बनाई, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। अब स्वयं भगवान अवतरित होके अपनी नजरों से निहाल करने के लिए हमें आया हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? तो महसूस करना है जैसे भगवान हमारे घर में अवतरित हो गया है। वो घर भी हमारा नहीं है, उसी का घर है। वरदान में था ना कल, मेरेपन की खोट, चाहे प्रवृत्ति में रहते चाहे कहीं भी है, मेरा घर नहीं, बाबा का घर है वो। तो जैसे वो स्वयं भाग्य विधाता अवतरित हो गया है, वो नजरों से निहाल मुझे कर रहा है, वो इन आंखों में एकदम पवित्रता का फुल करंट भर रहा है, वो रोशनी भर रहा है, मेरी आंखों में पवित्रता का ही प्रकाश है, समाया हुआ है। जैसे संपूर्ण आंखें पवित्र आंखें हैं, तो तीसरा स्वरूप था पूज्य स्वरूप। तो सत्य अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात सत, सत्य अर्थात जो सत्यम शिवम सुंदरम बाप की महिमा है, वो महिमा भी हमें अपने आप को अनुभव करानी है। दूसरा सर्वगुण संपन्न, जो बाबा ने कहा देवताओं की महिमा क्या है, सर्वगुण संपन्न, तो उस संपूर्णता के इस रूप में हमको स्थित रहना है। ऐसा नहीं बार बार हम से आसन से नीचे उतर जाएं। नेक्स्ट रॉयल्टी, बाबा ने क्या, रॉयल्टी अर्थात सच तो बिठो नच, अर्थात उसका अर्थ क्या बताया, जरा भी थोड़ा, इससे पहले और बाबा ने बताया थोड़ा भी मिलावट नहीं हो इसमें, है ना, क्योंकि संस्कार तो मिलावट वाले पड़ गए हैं। संस्कार पड़े हुए द्वापर युग के, कौन से, कथाएं करने के, कीर्तन करने के, तो संस्कार वो यहां भी काम करते रहते हैं। आज की मूल्य में था ना कि ज्यादा बुनमुन नहीं करनी है, सुना था ना आज की मूल्य में, अर्थात क्या, अपने पुराने संस्कारों को भी हम मिलाते रहते हैं, बाबा से मांगते रहते हैं दे दो सुख, दे दो शांति, दे दो, कुछ भी नहीं मांगना बाबा से, वो स्वयं ही अपना हो गया, तो मांगने की जरूरत क्या है। बाबा कहते हैं मांगने संस्कार रायल आत्माओं के नहीं है, रायल आत्माओं के संस्कार तो देने गए हैं। तो हमको हमेशा दातापन की स्टेज पर स्थित रहना है, जरा भी मिलावट नहीं करनी है, अपने सत्य संपूर्ण स्वरूप में हमेशा स्थित रहना है, चाहिए चाहिए नहीं करना है। तो सच तो बिठो नच, अर्थात सदा उनकी खुशी बढ़ती रहेगी, खुशी ऐसा नहीं कभी कम कभी ज्यादा, दिन प्रतिदिन हमारी खुशी में इजाफा अर्थात बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो खुशी कौन सी बातें कम करती हैं, जब हम, कब कम होता है, जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, अपने आप से थोड़ा धोखा करते हैं। जो हमको श्रीमत मिलती है और उस श्रीमत में चलने की ताकत है हमारे अंदर, चल भी सकते हैं, लेकिन उस श्रीमत को हम थोड़ा नज़रअंदाज करके धीरे धीरे माया की मत को पकड़ लेते हैं, और माया की मत तो अनेक प्रकार से हमारा हमारी परिक्रमा करती रहती है, वो भी देखती है कब ये थोड़ा सा फ्री हो तो मैं अपना कब्जा कर लूँ इनके ऊपर जाकर। तो श्रीमत का थोड़ा सा भी अगर उल्लंघन करते हैं वो हमारे लिए घातक बन जाता है, स्वयं ही अपने साथ हम धोखा करते रहते हैं। तो सच तो बिठो न चरथा, सदा खुशी में रहने वाले, खुशी दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जानी चाहिए, जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन की यात्रा बढ़ती जा रही है हमारी खुशी बढ़ती जानी चाहिए। पुरानी बातें छोड़ देनी है, फुल स्टॉप लगा देना, नहीं तो अधिकतर हम पुरानी बातों को पकड़ के रहते हैं। अगर कोई गलतियां हो भी गई क्या कर सकते हैं, छोड़ दो उनको, आज से नया जीवन हुआ अब भी सही, पिछला सब भूल जाओ, क्योंकि पिछले वक्त सोचने से फायदा तो है नहीं कुछ भी, तो हम उसको क्यों सोचें। इतना बाबा ने अच्छे अच्छे हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, बाबा कहते बिंदी लगा दो बात खत्म, जब स्वयं भगवान कह रहा है बिंदी लगा दो, तो फिर क्यों पिछली बात को पकड़ के बैठे, फिर उसके बारे में क्या क्यों कब कैसे प्रश्नों का अंबार लग जाता है, प्रश्नों की लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है, और उन्हीं प्रश्नों की उलझन में हमारी सारी प्रसन्नता गायब। जो हमारी ओरिजिनल निजी संपत्ति है, अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को किसी के, खुद हम अपने हाथ से ऐसे ही दे दें तो कैसे कहेंगे। तो बाबा कहते खुशी दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जानी चाहिए, और रायल आत्माएं अर्थात सबकी प्यारी होंगी वो, हाँ न्यारी भी होंगी, वो प्यारी होंगी, प्यारी अर्थात सबको, सबका आकर्षण बन जाएंगी वो। लेकिन वो आकर्षण अटैचमेंट वाला नहीं होगा, वो हद का आकर्षण नहीं होगा। जैसे हम दादियों को देखते हैं कितना आकर्षण मूर्त हैं वो, लेकिन अटैचमेंट नहीं है किसी से भी उनकी, वो जितना न्यारी हैं, जितना प्यारी हैं उतनी न्यारी हैं। तो ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में अगर हमारी रॉयल्टी है, उस स्टेज पर हम स्थित रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारा न्यारापन भी बढ़ता जाएगा। ना कोई हमारे पर उस तरह से आकर्षित होगा, हाँ रूहानियत के हिसाब से होगा, पुरुषार्थ के ज्ञान की लेन देन के हिसाब से होगा, लेकिन अटैचमेंट हमारी, जो अटैचमेंट हमको अपनी अवस्था से गिरा दे, वो अटैचमेंट नहीं होगी, उससे हम डिटैच होंगे। ना हम किसी को आकर्षित करें, ना कोई हमें आकर्षित करे, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। तो ये है रॉयल्टी, रियल रॉयल्टी, रियल रॉयल्टी अर्थात जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना प्यारा उतना न्यारा, इसको कहेंगे रियल प्यार। बाबा कहते तपस्या का अर्थ है संपूर्ण पवित्रता, रियल प्यार, तपस्वी राज आत्माएं। तो सच तो बिठो नच, और मांगने के संस्कार नहीं, रायल आत्माएं मांगती नहीं किसी से। और यहां मांगना कौन सा होता है, भक्ति मार्ग मांगना तो बंद हो गया, वो मोटी मोटी बातें बंद हो गई, लेकिन ज्ञान मार्ग में कौन सी मांगते हैं, सम्मान मिलना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते तो मान सम्मान की अनेक प्रकार की सूक्ष्म इच्छाएं मन में जागृत होने लगती हैं। अगर नहीं तो साधन चाहिए, चाहिए चाहिए कि गीत गाते रहते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे मन से भरपूर हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, वो सदा खुश रहेंगे, वो तो सदा देने वाले हैं, चाहे उनके पास थूल चीज कोई नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी ना में भी हां का अनुभव करेंगे वो। और जो मन से खाली है वो हां में भी ना का अनुभव करे, जितने मर्जी साधनों का ढेर लगा दिया जाए फिर भी उनको थोड़ी इच्छा बढ़ती जाएगी। और जो मन से भरपूर आत्मे वो हैं इच्छा मात्रम अविद्या, अनेक प्रकार की जो अनावश्यक इच्छाएं जो हमारी खुशी को छीन लेती हैं। और वास्तविक खुशी किसमें है, रियल खुशी तो साधना में है, साधनों में नहीं है। इस संसार के जितने भी साधन हैं वो तो विनाशी हैं, आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा की प्यास अविनाशी परमात्मा ही बुझा सकता है, वो इस संसार के विनाशी साधन ही बुझा सकते। विनाशी साधन तो हमको धीरे धीरे हमारी साधना को खंडित करेंगे। बाबा कहते हैं यूज करो, लेकिन डिटैच होके उनको उसको बार बार हमको वो खींचे नहीं, वो साधन है तब तो तब भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों में स्थिति एक रस रहनी चाहिए। यज्ञ की शुरुआत में दादियों ने कितनी साधना की है, इतने साधन होते थे, मीलों मील पैदल चल के, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते थे पहले बहनें साधन अपना सेवा करने जाते थे, एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं, दूसरी उतर रहे, तीसरी चढ़ रहे हैं, फिर दूर दूर एक एक घर मिलता है जाके, वहां कोर्स कराने जाना, पता नहीं वो भी ज्ञान में चलता है नहीं चलता फिर भी। तो पुराने वो है वास्तविक साधना तपस्या। पिछले संडे की मुरली में था, तपस्या केवल याद में बैठने की तपस्या नहीं है, हर कर्म तपस्या वाला है, कर्म योगी जीवन। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसा नहीं है हमको मन को इतना भरपूर रखना है कि कोई भी चीज हमारे मन को आकर्षित नहीं करे। और मन भरेगा ज्ञान से भरेगा, मन भरेगा बाबा के प्यार से भरेगा। बाबा कहते सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ के अपने आप को परमात्म प्यार से इतना भर लो, इतना भरपूर कर लो कि सारे दिन में कोई भी देहधारी का प्यार हमको आकर्षित नहीं करे। अगर हमने अपने मन को परमात्म प्यार से नहीं भरा हुआ है तो देहधारियों का प्यार ही आकर्षित करता रहेगा, और वो सारा संसार तो वो अनुभव किया है वो गिराने वाला ही सारा, चाहे वो लौकिक में है चाहे अलौकिक में है, दोनों से ऊपर हम रहना है। इसलिए सवेरे सवेरे परमात्म प्यार से अपने मन को इतना भरपूर कर लेना है। बाबा सवेरे सवेरे कितने अच्छे ड्रिल भी चलाते हैं, वो ड्रिल सुनते वो सारे दिन में अनुभव करना है, जैसे उस परमात्म प्यार की बरसात हो रही है, जैसे मारे सारी मन बुद्धि की नसें ब्लॉक के सारी खुल रही है, और रग रग में परमात्म प्यार समा रहा है वो, है ना, पूरी नसों में परमात्म प्यार समा रहा है, सारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है उसमें परमात्म प्यार दौड़ रहा है, परमात्म शक्तियां दौड़ रही हैं, सवेरे सवेरे अपने आप को इतना चार्ज कर लेना है, तो वो नए संस्कार फिर अपने आप काम करते रहेंगे, फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बताया ना, एक बार अगर आदत डाल दी, एक बार गाड़ी को पटरी पर डाल दिया तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा अटेंशन तो देनी पड़ती है। तो मांगने के संस्कार नहीं, चाहिए चाहिए कि नहीं, कौन से संस्कार, पाना था सो पा लिया, लेकिन वो सहज काम नहीं आएगा गीत गाना, लेकिन दूसरा उसका अनुभव करना है। तो सारे दिन में जितने भी हमको बाबा के अलग अलग ज्ञान बिंदु मिलते हैं, ज्ञान की खुराक मिलती है, इस खुराक को बार बार खाते रहना, ताकि वो नशा धीरे धीरे हमारा अपना बन जाए और निरंतर वो नशा चढ़ता रहे। संसार में भी नशा जो करते हैं लोग, अगर उतर जाता तो फिर क्या करते हैं, फिर पीते हैं, फिर उतरे फिर पीते हैं, जो पियक्कड़ होते हैं बार बार पीते रहते हैं। तो हमको वही करना है, ज्ञान का नशा हमको बार बार हमको लेते रहना है, क्योंकि ज्ञान से विस्मृत हुए तो माया का जो ज्ञान का पर्दा हमको एकदम नीचे ला देगा, क्योंकि वो संस्कार बड़े हमारे अंदर में समाये हुए हैं अभी, और पता नहीं किस समय वो संस्कार बाहर निकल के आते हैं। सभी अनुभव करते होंगे, लंबे समय से हम अच्छा पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसे संस्कार आते हैं, ऐसे मन में संकल्प आते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था उनके बारे में। बाबा ने कहा ना, माया तो तूफान लाएगी लाएगी, लेकिन तुमको डरना नहीं है, तुमको नए संकल्प नए विचार बुद्धि में भरपूर रखने हैं, ताकि समय आने पर हमको सोचना नहीं पड़े। जैसे बताया ना आज बाबा ने मुरली में वरदान, क्या था वरदान, सर्वशक्तियों को समय पर कार्य में लगाने वाले। हाँ, तो सारी शक्तियां समय पर कार्य में करें, ऐसा नहीं कि जब शक्ति की जरूरत है तो हम है ही नहीं हमारे पास शक्ति, शक्ति कहीं और ही चली गई है और धोखा खा जाए उस समय। ऐसा बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं सोचना कि एक शक्ति की कमी है तो कोई बात नहीं चला लेंगे, नहीं, वो एक ही शक्ति हमको क्या कर देगी, फेल कर देगी। तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है जो संसार की साधु सन्यासी नहीं कर पाते, इतने लंबे समय से जो वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े हुए हैं वो भी नहीं कर पाए, और बाबा ने हम सबको कितना साधारणता में बता दिया। आज बाबा ने कहा ना, भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी क्या, फिर भी इतना ऊंचा ज्ञान मिल जाता हम सबको, तो कितना हम सबका कितना भाग्य है। तो फिर पार्टियों के साथ बाबा ने क्या मुलाकात की, मुलाकात में क्या बताया, अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यशाली समझते हो, क्यों, क्योंकि अविनाशी भाग्य है, अविनाशी बाप है, अविनाशी वर्षा मिला है, अविनाशी प्राप्तियां हैं। तो इस नशे में हमको हमेशा रहना है, कौन कौन सी हमको प्राप्तियां मिली हैं उसकी लिस्ट बाबा कहते हैं हमेशा सामने रखो, वो लिस्ट आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए, निरंतर हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दो चार जब मिलते हैं आपस में, माया बड़ी सूक्ष्म है, पता नहीं चलता कब घुस जाती है, और जब टाइम खत्म हो जाता है तो पता चलता हो, फिर बोलेंगे ड्रामा में ऐसे था, कोई बात नहीं, लास्ट में ड्रामा को दोष दे देते हैं, फिर ड्रामा भी हमको घुमाएगा, डराता रहेगा ड्रामा भी। तो हमको ये जो समय मिला है बड़ा अमूल्य समय है, इसको हमको वेस्ट नहीं करना है, ज्ञान योग में मन बुद्धि को बिजी रखना है। और बाबा कहते हैं रॉयल्टी अर्थात क्या है, दृष्टि वृत्ति कृति में, ये तो सारा ज्ञान रॉयल्टी अर्थात हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, वो ज्ञान हमारे नेचर को बदल देगा अपने आप। ज्ञान जैसे फाउंडेशन है, बिना ज्ञान के योग भी नहीं लगेगा, इसलिए हम हमेशा कहते हैं बिना ज्ञान के योग के योग में बैठते हैं तो योग शक्तिशाली नहीं होता है, ज्ञान के साथ योग में बैठना है, अर्थात समझ के साथ योग में बैठना है। जैसे अभी भट्ठी करने आए हैं तो भट्ठी भी करने आए तो भट्ठी के ऊपर ही अटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए, और ये हमारे तीन चार दिन ऐसे चले जाए साधारणता में, हमारे हाथ में कुछ नहीं आए तो बाद में क्या होगा, यहाँ तो खुश रहेंगे मधुमन में तो अच्छा लगेगा, लेकिन खुशी तो घर में चाहिए, शांति तो घर में चाहिए। तो यही संस्कारों को परिवर्तन करने का एक सुनहरा मौका मिला इस भट्ठी में, इसलिए जिस काम के लिए हम आए हैं वही काम करना है, नहीं तो यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ से फोन लगा के जोर जोर से घर में बातें अभी भी कर रहे थे बाहर, नहीं, मधुबन माना मधुबन की गरिमा, उसको हमको बनाए रखना है, मधुबन माना साइलेंस जोन, मधुबन माना तपस्या भूमि, बाप दादा की चरित्र भूमि, दादियों की तपस्या भूमि है, उस तपस्या भूमि का हमको पूरा फायदा लेना है, वो सारे वाइब्रेशन अपने आप में समा के जाने हैं, अपनी रग रग में समा के जाने हैं, इसे साधारणता में व्यतीत नहीं करना है ना, जो बात करनी है आज ही कर लो, फिर बाद में 3-4 दिन मोबाइल को साइलेंस कर दो, उसके बिना चल जा मोबाइल नहीं, तभी तो काम चलते थे ना। लेकिन यहाँ आके भी हम पूछते रहते हैं सब्जी क्या बनाई है, रोटी खाई नहीं खाई, पानी भरा है नहीं भरा, वो ही बातें चलती रहती हैं। बताओ, बाबा कहते तुम्हारा एक एक संकल्प विश्व के लिए है, एक एक संकल्प विश्व को खुराक देने वाला है। और हम हाँ जी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, और हम जिम्मेवारी क्या पूछ रहे हैं, चिंटू रोटी खाए कि नहीं खाई, वो चिंटू पिंटू में बुद्धि लगी अभी तक, बताओ। हाँ तो बात करनी है, लेकिन एक बार कर लिया तो सप्ताह भर छोड़ दो, फिर ऐसा नहीं बिल्कुल सन्यासी भी बन जाना, नहीं तो घर वाले सोचेंगे हम जाएंगे नहीं मधुबन, ये हमारे से बात ही नहीं करते हैं, ऐसे उल्टा भी ना हो जाए। तो टू दी पॉइंट बात करनी है और अपना टाइम पूरा सफल करना है। बाबा कहते इस देह को ही भूलना है तो हम दूसरे देह को याद कर रहे हैं। बताया ना पहले भी कि हमारा जब घर में रहते तो ध्यान मधुबन में होता है, और जब मधुबन में होता तो ध्यान घर में होता है, उल्टा काम हो रहा है। जहां हैं हम वहीं अपने को महसूस करना है, मैं सोचना हमेशा मैं कौन से स्थान पर बैठा हूं, मैं यहां किस लिए बैठा हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरे आसपास कौन है, ये स्थान कैसा है, इस स्थान का महत्व क्या है। जब हम इस स्मृति से बैठेंगे तो लगेगा हाँ हमको कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, नहीं तो सारा मन बुद्धि ऐसे खाली चला जाएगा, नहीं तो हमारी रियलिटी तो हम ऐसे दूर रह जाएंगे, वही पुराने संस्कार रहेंगे चंचलता वाले। हमने देखा जिन्होंने अटेंशन दिया वो सारे चंचलता के संस्कार खत्म हो गया, कोसों दूर चले गए हैं, अभी जैसे है ही नहीं है वो धीरे धीरे। इसलिए बताया ना धैर्यता बहुत चाहिए इस मार्ग में, बिना धैर्यता के इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, इसलिए बहुत धैर्यता चाहिए। अपने संस्कारों से भी हमको घबराना नहीं है, धीरे 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 बदलते हैं संस्कार। तो बाबा कहते रियलिटी अर्थात रियल, रियलिटी रियलिटी अर्थात सत्यता, वो सत्य स्वरूप में स्थित रहना जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, सत्य स्वरूप में अपने आप को बार बार परम धाम में अनुभव करना है। सत्य अर्थात अविनाशी, जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है, है ना। अब यह भी चीज सत्य ही है, माइक तो माइक ही है, सत्य है कि नहीं है, लेकिन ये सत्य किस रूप में नहीं है, क्योंकि विनाशी है, इसलिए इसको सत्य नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ये तो विनाशी है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। इसलिए बताया ना अविनाशी की प्यास अविनाशी बाप ही बुझा सकता है। तो देखना है कि हमारे मन बुद्धि में कितना ज्ञान घूम रहा है या फिर अज्ञान घूम रहा है, कुछ तो कुछ घूमता ही रहता है। तो सुदर्शन चक्करधारी बन के अपने आप को देखते रहना, स्वयं का विश्लेषण करना है, स्वयं का भी जांच करनी है। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना। अपने आप को क्या चेक करो, ये नहीं चेक करो कि मुझे क्रोध नहीं आया, गाली नहीं दी, ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। प्योरिटी की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कहां तक आई है वो चेक करो, अपने आप को जांच करो उसको। और क्या कहा काल की मुरली में, अच्छा आज की मुरली में कुछ तो बोलो, सब पता आपको, सब सारा अंदर ही है। पहले तो आप ये सोचो कि हमें सब कुछ पता है, बोलो मुख से सभी कि हमें सब कुछ पता है। अब बताओ क्या क्या पता है। हाँ देखो एक पॉइंट आया कि नहीं आया, कितना बड़ा भयंकर पॉइंट है ये। एक संघ तोड़ देना दूसरा संघ जोड़ लेना, इसे नहीं और सब संघ तोड़ एक संघ जोड़ना है। हाँ और सब संघ तोड़ एक संघ जोड़ना है। हाँ और क्या बोला, हाँ जो पढ़े लिखे नहीं है वो बहुत अच्छे हैं, और पढ़े लिखे बहुत वो प्रश्न उत्तर ज्यादा करते हैं। हाँ बाबा ने कहा अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बहुत अच्छा है, खाली है पहले से। हाँ हाँ और अपने स्वधर्म में टिके रहना है, और कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, और फूलों को खुशबूदार फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा फूल भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, कोई रंग वाले फूल हैं जी, कोई आग का फूल है। तो और क्या बोला आज, हाँ जी जले ना क्यों परवाना, हाँ गीत था। और क्या कहा, अच्छा कल का स्लोगन क्या था, हैं बाप को निरंतर याद करो, और कल का स्लोगन क्या था, कौन कौन सी, पहली दूसरी और तीसरी, कौन कौन सी करना, अगर ये क्या होगा इन तीनों को करने से क्या होगा। हाँ सारे ज्ञान का सार तो उसमें आ गया, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों समान हो। तो पहले तो समझना अर्थात ज्ञान को जैसा है वैसा ही समझना, नहीं तो मिक्स नहीं कर देना। जो बाबा ने कहा द्वापर के संस्कार पड़े हैं कथाओं के कीर्तन के, वो मिक्स कर देते हैं। तो जैसा उस ज्ञान को वैसे ही समझना जैसा वो है। फिर चाहना अर्थात जो हम चाहते हैं लक्ष्य क्लियर हो, आज की मुरली में था ना कि लक्ष्य क्लियर होगा और हाँ नजर से निहाल किंदा स्वामी। तो अभी वो साधु सन्यासी कहते लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में भगवान हमको करने के लिए आए। तो समझना चाहना और करना तीनों समान हो तब करे बनेंगे बाप समान। और क्या कहा आज, एम ऑब्जेक्ट सामने क्लियर होगी तो क्या होगा, हाँ मुक्ति जाम। ये लक्ष्य प्रश्न में उत्तर था ना, प्रश्न का उत्तर था। हाँ और हाँ प्राप्तियों को भूलना अर्थात थकना है। तो प्राप्तियों को हमेशा स्मृति में रखना है। सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है, बाबा मिला। और दूसरी प्राप्ति दूसरे नंबर की, सत्य ज्ञान मिला। तीसरी प्राप्ति, हम अपने आप को ही मिल गए कि हम हैं, अपने आप को भूल गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, अपने आप को तो शरीर ही समझ रहे थे, हम जो हैं वो तो समझ ही नहीं थे, जो नहीं है वो ही समझ गए। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो सत्यता से कितना दूर हो गए थे हम। अब हमको पता चला, अपने सत्य स्वरूप का पता चला। और क्या कहा, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, टाकी से परे जाना है, मूवी से परे जाना है, साइलेंस का अभ्यास करना है। और क्या कहा, उतारना उतार दो। और क्या कहा, वो तो रिकॉर्ड बजेगा, रिकॉर्ड बजेगा अपने आप। और क्या कहा बाबा ने, हाँ तुम हो सुखदाता के बच्चे, इसलिए सबको सुख देना है, इसलिए पहले दुखी होंगे तो दुखी होके मरेंगे। बाबा कहते हैं श्राप नहीं देता हूं, लेकिन ये तो समझ है ना, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। है जी, सच्चा फ्लावर बनना है, खुशबूदार फ्लावर बनना है। और क्या कहा, हाँ वो सोते हैं स्वर्ग पधार गया, स्वर्ग से धार गया, स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग तो यही है। तो वो सारे संस्कार अभी अनुभव करने हैं। तो मुरली में कितनी सारी बातें थी, बाबा ने किसको देखा, श्रेष्ठ आत्माओं को, रायल आत्माओं को, तीन उनको होमवर्क दिए। कौन कौन से, अपने आत्मिक अनादि स्वरूप का अनुभव करना है, दूसरा अपने आदि स्वरूप का अनुभव करना है, तीसरा अपने पूज्य स्वरूप का। इन सबको ना योग में कन्वर्ट कर देना है। तो योग ज्ञान को योग में, मुरली में बैठे बैठे हमारा योग हो जाता है कि, क्योंकि अंतिम कौन सी हमारी पुरुषार्थ है, निरंतर योगी निरंतर सेवादारी। क्योंकि दो घंटे के योगी नहीं है, आंखें सोते सोते बंद हो जाए तो सवेरे उठे नहीं तो, इसलिए मम्मा बाबा का जो योग है ना, वो नींद भी योग में गिनती होती थी। सारे दिन का जो हम सोचते हैं बोलते हैं उसका जो स्वप्न का आधार है हमारा साकार जीवन है, इसलिए स्वप्न भी हमारे वैसे होते जाएंगे जो सारे दिन में हम दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। तो तीन स्वरूपों का अभ्यास करना है, फिर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। जैसे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, अपने भी बाबा कहते हो जो तुम सर्वगुण संपन्न अपनी महिमा करते हो, तुम्हारी महिमा कितनी, कीर्तन होता है, कीर्ति होती है, साजो बाजो गाजो के साथ होती है। तो संग देवात्माओं का ही होता है कीर्ति, संसार के धर्म नेताओं का, सन्यासियों का नहीं होता है, केवल तुम आत्मा का होता है। तो वो सारा कितना नशे वाली बातें हैं। फिर रॉयल्टी अर्थात सच तो बिठो नच, रॉयल्टी अर्थात अति प्यारा और अति न्यारा, रॉयल्टी अर्थात संपूर्ण पवित्र, रॉयल्टी अर्थात कभी डैश के संस्कार नहीं, मांगने के संस्कार नहीं, रॉयल्टी अर्थात सदा भरपूर आत्मा, सदा संपन्न आत्मा, तृप्त आत्मा, रॉयल्टी अर्थात सभ्यता की देवी। एक बीच में छूट गया ना, सभ्यता क्या देवी, तो हम सब कौन है, सभ्यता की देवियां हैं। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकल में अभी हमको अनुभव करनी है। और बाबा कहते हैं अविनाशी बाप मिला, अविनाशी भाग्य, अविनाशी वर्षा, इस स्मृति में हमेशा स्थित रहना है। अविनाशी प्राप्तियों की लिस्ट हमें हमेशा सामने रखनी है। ठीक है, ओम शांति।
तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से, हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा जा सारे बंधन से, इस आवाज की दुनिया से चल, हो हो इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दीव श्रृंगार से, सज के दीव श्रृंगार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो।